शांति। तो आज का ये भथी का आखिरी सत्र है ज्ञान योग का, और इसमें हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप संतरा नगरी नागपुर से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1972 में आपने यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त किया और 1973 में नागपुर यूनिवर्सिटी से MSc की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की, और तब से ही धुन सवार हो गई। अलौकिक पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लेना है और ज्ञान की गहराई में उतरने लगे, योग की गहराई में उतरने लगे, और 76 में मधुबन धरनी पर कदम रखा और आते ही जीवन समर्पित कर दिया। तो 76 से लेकर आज दिन तक इस हेडक्वार्टर में रहते हुए सभी कॉम्प्लेक्स में, देश और विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 90 से भी अधिक देशों का भ्रमण किया है बाबा का संदेश देने के लिए, ब्राह्मण बच्चों को पुरुषार्थ में उमंग उत्साह दिलाने के लिए। इसके साथ साथ जो हमारा टोली किचन है तीनों ही कॉम्प्लेक्स में, वहाँ उनके आपके निर्देशन में वो चलते हैं, और जहाँ से हम सभी को टोली सप्लाई होती है, और टोली खाकर हम ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। हाँ, और आर्टिकल्स भी आप पत्रिकाओं में देते रहते हैं, रेडियो में इंटरव्यू देते रहते हैं, और हमारा जो यूथ विंग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। आज हमारे बीच में बहुत सुंदर विषय के साथ बाप समान रहम दिल कैसे बने, तो सुनते हैं भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। बाप समान रहम दिल कैसे बने। बाबा रहम के सागर हैं, हम सभी आत्माएं दुख के सागर में गोते खा रहे थे द्वापर युग से। तो रहम के सागर बाबा ने हमें दुख के सागर से निकाल कर अपने दिल तक पर बिठाया, अर्थात अपनी शीतल गोद में बिठाया। तो बाप हमारा रहम का सागर है, तो हमें भी बाप समान रहम मास्टर, रहम के सागर बनना जरूरी है। दुनिया में कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा होता है, तो रहम दिल कैसे बने। दुनिया में जो लोग रहम दिल होते हैं वो किसी परिस्थिति के कारण या किसी घटना के कारण टेम्पररी रहम दिल बनते हैं, लेकिन हमें बेहद के रहम दिल बनना है। उसके लिए बाबा में जो गुण हैं, जो शक्तियां हैं, उनको पहले हमें अपने जीवन में धारण करना होगा। तो रहम दिल बनने के लिए कुछ एक बातें हमें अपने जीवन में धारण करनी होगी। पहली बात, हम सभी आत्माएं कल्प वृक्ष के तने में बैठे हैं, तने के द्वारा ही वृक्ष को खाद मिलता है, शक्ति मिलती है। तने के बिना वृक्ष आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये सारा संसार कल्प वृक्ष के समान है और हम उसके तने में बैठे हैं। तो तने में बैठने वाली आत्माओं को जो भी आत्माओं रूपी पत्ते हैं कल्प वृक्ष के, उसकी पालना करनी होगी। इसके लिए रहम दिल बनना होगा। तो जब हम तने में बैठे हैं, ऐसी स्मृति रहती है, तो हमें इन सभी आत्माओं की पालना करनी है, उनको शक्ति प्रदान करनी है, तो स्वतः ही रहम दिल का गुण हमारे में आने लगता है। दूसरी बात, बाप समान रहम दिल बनने के लिए सदा याद रखें कि मैं पूर्वज आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं। जो पूर्वज आत्माएं होती हैं परिवार में, जो अपनी दूसरी पीढ़ियां होती है, उनका विशेष ध्यान देती है, उनकी कमियां नहीं देखते हैं, उनको विशेष मदद करते रहते हैं। तो ऐसे मैं पूर्वज आत्मा हूं, ये जब हमें स्मृति में रहता है, तो हमें जो भी हमारी बाद में आत्माएं आती हैं, उन सभी का ध्यान रखना जरूरी है, उन सभी की पालना करना जरूरी है। उसके लिए आवश्यकता है रहम दिल के गुण की। पूर्वज जो हैं, अपनी जो भी नई पीढ़ियां होती है, उनकी पालना करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो उनकी पालना, उनकी सेवा हम तभी कर सकते हैं जब हमारे मन में रहम दिल की भावना पनपती है। तीसरी बात, है रहम दिल बाप समान बनने के लिए अपनत्व की भावना, अपना अपनेपन की भावना, अपनत्व की भावना हमारे मन में सदा रहे। जब हम किसी को पराये समझते हैं, तो उनका हम ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन जब हम अपने समझने लगते हैं, तो ना चाहते हुए उनकी पालना करने के लिए हमारे मन में संकल्प उठते हैं। जैसे बाबा, ब्रह्मा बाबा प्रजापिता होने के कारण सारे संसार की प्रजा का मैं पिता हूं, ये भावना होने के कारण सबके प्रति अपनत्व की भावना रहती थी। तो ऐसे हमारा ये सारा विश्व का एक ही कुटुंब है और एक शिव पिता के हम सभी संतान हैं, सभी अपने हैं और उनका ध्यान उनकी सेवा हमें करनी है। उसके लिए रहम दिल का गुण जीवन में धारण करना होगा, तभी हम इतनी आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। चौथी बात, बाप समान रहम दिल बनने के लिए सदा याद रखें कि मैं आत्मा उद्धार मूर्त हूं, आधार मूर्त हूं। अनेक आत्माओं के जीवन का आधार मूर्त हूं और अनेक आत्माओं की उद्धार करने की जिम्मेदारी भी मुझ आत्मा पर है। तो अनेक आत्माओं का उद्धार करने के लिए हमारे दिल में सदा रहम दिल भाव पनपता रहना जरूरी है, तभी हम सभी का उद्धार कर सकते हैं, सभी का आधार बन के आगे उनको बढ़ा सकते हैं। पांचवी बात है, बाप समान रहम दिल बनने के लिए सदा स्वान में रहें, मैं मास्टर पालनहार आत्मा हूं। जैसे शिव बाबा इस संसार के पालनहार हैं, सभी आत्माओं को शांति शक्ति के खजाने बांटते हैं, उनकी पालना करते हैं, वैसे मैं भी आत्मा पालनहार हूं। खजानों के सागर बाप से मुझे खजाने लेते रहना है और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहना है। लेकिन इस बेहद की सेवा सफलता पूर्वक करने के लिए हमारे दिल में सदा रहम भाव पनपता रहे। तीन प्रकार के दिल होते हैं, कोमल दिल, कठोर दिल और रहम दिल। कोमल दिल बनना अर्थात किसी के दुख को देखकर उसके दुख में बह जाना और खुद भी दुख का अनुभव करना, कोमल दिल होना। दूसरों के दुख का प्रभाव हमारे दिल पर जल्दी होता है। कठोर दिल बनना अर्थात किसी के दुख को देखकर उसको हम परख नहीं सकें और उनको हम सहयोग भी नहीं दे सकें, ऐसा कठोर दिल भी हमें नहीं बनना है। हमें रहम दिल बनना है, किसी के दुख को पहचान कर परख कर जितना हो सके मुझे उनको सहयोग देना है, इसको कहते हैं रहम दिल बनना। तो मैं मास्टर पालनहार हूं, योगी आत्माएं परमात्मा से खजाने लेते रहते हैं और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहते हैं, उनकी वो पालना करते रहते हैं। लेकिन उसके लिए रहम दिल को अपनाना बहुत जरूरी है। छठवीं बात, रूहानियत से रहम दिल हम सहज बनते हैं। रूहानियत का भाव जब होता है, आत्मिक भाव जब होता है, तो हम बेहद में रहते हैं। देह का भाव जब होता है तो ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये गरीब है या अमीर हैं, ये भेदभाव हमारे दिल में रहता है। शरीर के रूप में जब हम देखते हैं, तब जब हम रूहानियत के दृष्टि से देखते हैं, सभी आत्माओं को रूह समझते हैं और एक शिव पिता की सभी संतान हैं, ऐसा जब अनुभव करते हैं तो रूहानियत के भाव से रहम दिल का गुण हमारे में स्वतः ही आने लगता है। इन सभी आत्माओं का मुझे भला करते रहना है। सातवीं बात है, पूर्व कल्प की स्मृति सदा रहे। ये रहम दिल का गुण हमने हर कल्प अपनाया है, पूर्व कल्प में भी अपनाया था, और अनेक आत्माओं की सेवा रहम दिल बनकर हम सभी ने की थी। उसकी यादगार अभी तक भी संसार में पाई जाती हैं। फरिश्तों के रूप में विदेश में और परियों के रूप में भारत में, हम बाबा के बच्चों ने रहम दिल बनकर फरिश्ता स्थिति के द्वारा सारे संसार की सल्वेशन आर्मी बनकर बहुत सेवा की थी। हर कल्प की हैं तो पूर्व कल्प की वो स्मृति रहने से ये रहम दिल का गुण हमारे जीवन में जल्दी धारण होता है, बड़ी सरलता से और सहजता से धारण होता है। हर कल्प हमने ये सेवा की, अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाया था, अनेक आत्माओं के मददगार बने थे। तो पूर्व कल्प की स्मृति सदा हमें रखना जरूरी है। सातवीं बात, रहम दिल का गुण को अपनाने के लिए मुझे देवताई गुण अपनाना होगा। देवताओं की मुद्रा हमेशा वरद हस्त के रूप में दिखाते हैं, वो हमेशा देने वाले होते हैं। तो हमेशा देने वाले दाता मुझे बनना अगर है तो उसके लिए रहम दिल को अपनाना होगा। रहम दिल के बिना हम दाता नहीं बन सकते हैं। तो देवताएं हमेशा देते रहते हैं, लेकिन हम देवता के बजाय लेवता बने, माला माल के बजाय कंगाल बने, डबल ताजधारी थे मोहताज बने, तो उसके कारण ये रहम दिल का गुण हमने खो दिया। अभी उस गुण को हमें जरूर अपनाना है, जैसे पिछले कल्प में हमने अपनाया था। तो मुझे देवता बनना है, ये सदा स्मृति रहती है, तो रहम दिल का गुण हमारे जीवन में स्वतः ही धारण होता जाता है। और आठवीं बात है, बाप समान रहम दिल बनने के लिए, आठवीं बात ना, नवीं बात, बाप समान रहम दिल बनने के लिए बेहद का भाव हमारे दिल में सदा रहे। देह उल्टा है हदे, जब हम देह समझते हैं तो हदों में रहते हैं, लेकिन हमें बेहद का भाव दिल में सदा रखना है। जैसे बाबा मुरली चलाते थे तो बाबा के सामने थोड़े बच्चे होते थे, आंखों के सामने थोड़े बच्चे होते थे, लेकिन सूक्ष्म आंखों के सामने सारे विश्व के बच्चे बाबा के सामने सदा रहते थे और बाबा उसी अनुसार मुरली चलाते थे बेहद में रहकर। तो हमें भी सदा बेहद का भाव दिल में रखना है। जो भी इर्द गिर्द होते हैं, जो हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, जो सेवा के क्षेत्र में हमारे सामने होते हैं, उतने ही नहीं लेकिन सूक्ष्म नेत्र से बेहद का परिवार हमारे सामने हो, अनगिनत आत्माओं का झुंड हमारे सामने हो और उनकी सेवा मुझे करनी है, ये भाव होने से रहम दिल का गुण हमारे जीवन में स्वतः ही धारण होता है। दसवीं बात, क्षमा भाव से रहम भाव स्वतः ही जीवन में धारण होता जाता है। क्षमा भाव, बाबा ने कभी भी हमारी कमजोरी नहीं देखी, बाबा ने कभी भी हमारा वर्तमान पुरुषार्थ स्वरूप नहीं देखा, हमेशा बाबा ने हमारा संपूर्ण स्वरूप देखा। और रहम दिल बनकर हम सभी आत्माओं की पालना बाबा ने की, क्षमा भाव को अपनाकर। तो जितने बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में क्षमा भाव सदा होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम अर्थात जो वीर होते हैं उनका क्षमा जो है वो भूषण होता है, आभूषण होता है, श्रृंगार होता है। किसी शाहिर ने कर दिया, कह दिया है, मैंने अपने जिंदगी को बना लिया आसा बना लिया, मैंने अपनी जिंदगी को आसा बना लिया, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली, आसान हो गया। क्योंकि जब हमारे सामने कोई किसी से टकराव होता है, कोई ऐसी भूल होती है, वो व्यक्ति हमारे सामने बार बार आता है और हमारे मन में उसके प्रति नकारात्मक और व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर हम छोटा बनकर उससे माफी मांगते हैं तो हमारा रास्ता साफ हो जाता है। तो किसी को माफी अगर हम मांगते हैं तो हम छोटे नहीं होते हैं, और किसी को गलती माफ भी करते हैं तो भी छोटे नहीं होते हैं, ये बड़े व्यक्ति की निशानी होती है। इसलिए रहम दिल के गुण को जीवन में मुझे अपनाना ही है। मेरा बाप रहम का सागर है तो मुझे भी मास्टर रहम का सागर बनना है। और जो रहम दिल होते हैं वो सेवा के बिना नहीं रह सकते हैं, और उसमें भी वो बेहद के सेवा पर हमेशा तत्पर रहते हैं, जैसे विश्व पिता विश्व की सेवा पर हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ऐसे ही हम मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माएं भी बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहते हैं। उसके लिए मनसा सेवा मुझे करना है, यह बात हमेशा स्मृति में रखनी है। जिस स्थान के लिए मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हूं बनी हूं, उतनी ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सारे विश्व की आत्माओं की सेवा मुझे करना है, इसके लिए बेहद की मनसा सेवा मुझे सफलता पूर्वक करना है। ये स्मृति सदा रहे। 10 बच्चों की माँ अगर कोई होती है तो सदा याद रखती है 10 बच्चों का मुझे ध्यान रखना है, उनको मुझे हर रोज खाना खिलाना है, हर प्रकार का मुझे उनकी पालना करनी है। तो अगर हम मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं तो सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है, भला करना है, तो उसके लिए मेरे पास इतने खजाने भी मुझे जमा करने होंगे। तो बेहद की मनसा सेवा करने के लिए बहुत सुंदर योग की स्थिति हमारी हो और बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति भी हमारी हो। बहुत सुंदर योग की स्थिति अर्थात शक्तिशाली योगाभ्यास हमको बढ़ाते रहना है, और उसमें भी विशेष बाबा कहते हैं 8 घंटे के ऊपर योग का चार्ट आपका होना चाहिए। हाँ, क्या इसके पीछे राज है? चलते फिरते उठते बैठते कम से कम 8 घंटा मुझे याद करो। क्यों बाबा ऐसे मुरली में कहते हैं? हाँ जी, हम अमृत वेले नुमा शाम के योगाभ्यास में कुछ शक्तियां बाबा से जरूर लेते हैं, है ना? थोड़ी शक्तियां हमारे पास जमा होती हैं, लेकिन सारे दिन भर में हम सेवा करते हैं अपने लिए औरों के लिए, कितने संकल्प क्रिएट करते हैं, उस संकल्पों के माध्यम से जितनी शक्तियां जमा करते हैं उतनी शक्तियां हम खर्च भी करते हैं। जमा का खाता कुछ भी नहीं होता है। अगर मेरे पास जमा का खाता नहीं होगा, स्टॉक खजानों का नहीं होगा, तो मैं अनेक आत्माओं की सेवा कैसे कर सकूंगा? हाँ, ये जमाना कैसा है? हाँ जी, जमाना होने ही नहीं देता है। जमा खजाने जमा होने ही नहीं देता है। बुद्धि बाबा की तरफ हमें लगानी है तो माया हमें हमारी बुद्धि इधर उधर भटकाती रहती है। ये जमाना ही ऐसा है। तो हमें खजानों को जमा करना है, उसके लिए पावरफुल योगाभ्यास करना होगा। इसलिए बाबा ने स्पष्ट इशारा दिया है कि साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, अभी जो समय चल रहा है शक्तिशाली योगाभ्यास करने का चल रहा है। क्यों भाई? हर रोज योगाभ्यास करते हैं, हर रोज मुरली सुनते हैं, ज्ञान स्नान योग स्नान करते हैं, फिर भी जब हम संगठन में आते हैं कारोबार में आते हैं तो विकारों के अंश वंश दिखाई देते हैं, थोड़ा रोब आता है, थोड़ी फीलिंग आ जाती है, थोड़ा कभी गर्म हो जाते हैं। इसका मतलब विकारों के अंश अभी भी मौज आत्मा में हैं। उसको मुझे हटाना होगा, मिटाना होगा, उसके लिए शक्तिशाली योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। शक्तिशाली योगाभ्यास से हम अपनी जो दाग है कमियों के, त्रुटियों को, उसको हटा सकते हैं, शक्तियों का खजाना जमा कर सकते हैं। ठीक है ना? और दूसरी पवित्रता की बहुत सुंदर स्थिति हमें बनाना है, क्योंकि पवित्र और शक्तिशाली संकल्प में ही वो क्षमता होती है दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए आत्मा तक शांति शक्ति हम पहुंचा सकते हैं। रहम दिल गुण वाले हमेशा बेहद की सेवा, मनसा सेवा सफलता पूर्वक करते रहते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। ये रहम दिल का गुण, दातापन का गुण हमें बहुत उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मदद करता है। तो उसके लिए मुझे बेहद की सेवा करनी है, मनसा सेवा करनी है। आप देखना, 4-5 साल के बाद जैसी जैसी परिस्थितियां बिगड़ती जाएगी, तो बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, वाचा कर्मणा सेवा कर ली सो कर ली, बाद में करना चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे, क्यों परिस्थितियां ऐसी आएगी। उस समय केवल मनसा सेवा का बोलबाला होगा, और अगर उस समय मेरे पास मनसा सेवा करने का बेहद का साधन नहीं होगा तो मैं ऐसी बेहद की कमाई नहीं कर सकूंगा। इसके लिए मुझे पवित्रता की भी बहुत अच्छी स्थिति बनाना है। संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है? हाँ जी, किसी भी आत्मा के प्रति अपवित्र संकल्प न चले, नकारात्मक संकल्प न चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे भी बढ़कर हमें आगे बढ़ना है। बाबा कहते हैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। किसी भी व्यक्ति की याद आती है हमें, तो उस व्यक्ति के प्रति व्यर्थ संकल्प चलते हैं, कोई भी संकल्प चलते हैं, लेकिन उस समय बाबा की याद भूल जाती है, तो अपवित्रता ही कहेंगे ना उसको, व्यर्थ को अपवित्रता ही कहेंगे। बाबा ने स्पष्ट कर दिया, व्यर्थ भी अपवित्रता है। किसी व्यक्ति की स्मृति भी आना क्या है? व्यर्थ संकल्प चलना। बाबा क्यों बार बार हर मुरली में कहते मुझे याद करो, मुझे याद करो? क्या बात है भाई, पीछे पड़ा रहता है बाबा, मुझे याद करो, मुझे याद करो, किसी देहदारी को याद नहीं करना। क्यों भाई, क्या बात है? हैं जी, मुझे ही याद करो, किसी को नहीं याद करो, भाई क्या बात है? जरूर कुछ तो कारण होगा ना। हाँ, एक सिद्धांत है, एनर्जी हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट के तरफ प्रवाहित होती है। एनर्जी हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट के तरफ ट्रांसफर होती है, प्रवाहित होती है। अगर मैं आत्मा बाबा को याद करती हूँ, बाबा तो हायर पॉइंट हो गए, बाबा को याद करती हूँ तो मुझे शक्तियाँ मिलती है, मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। लेकिन किसी समय मैं अगर किसी व्यक्ति को याद करता हूँ, मेरी बुद्धि रूपी तार उस आत्मा से जुड़ी हुई है, तो मेरी एनर्जी उस आत्मा के तरफ प्रवाहित होती है, मेरी एनर्जी खर्च होती है, जमा के बजाय खर्च होती है, इसलिए मुझे केवल बाबा को याद करना है, इसी की धुन में सदा लगे रहना है, ठीक है ना। तो आप सभी को इतना गोल्डन चांस मिला हुआ है ऐसी श्रेष्ठ धरणी पर आकर तपस्या करने का, तो ये गोल्डन चांस हमें बाबा देता है बहुत स्वयं को भरपूर करने के लिए। बाबा का इशारा अभी है, अभी अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। इतना बड़ा बाबा, इतना उच्च कोटि का ज्ञान हमें देते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? क्या है? इतना श्रेष्ठ ज्ञान हमें बाबा देते हैं, उसका प्रमाण है श्रेष्ठ और गहन अलौकिक अनुभव जीवन में करते रहना। जैसे उस दुनिया में जो धनवान होते हैं, जिनके पास बहुत धन होता है, वो धनवान कहलाते, तो ऐसे ब्राह्मण संसार में धनवान कौन कहलाते हैं? जिन आत्माओं के पास अलौकिक अनुभव का धन बहुत होता है, वो वास्तव में धनवान कहलाते हैं। तो हमें अलौकिक अनुभूतियों के धन को बहुत अच्छी तरह से बढ़ाते जाना है, बस यही तात सदा लगी रहे, समझा? क्योंकि जितनी अनुभव का स्टॉक हमारे पास बढ़ता जाता है, उतनी स्थिति हमारी परिपक्व, अच्छल डोल बनती जाती है, शक्तिशाली बनती जाती है। भगवान तो मुझे मिला, लेकिन भगवान से मुझे क्या मिला भाई? हमें अपने से पूछना है, बैठकर अकेले में। हम बाबा के पास आए हैं श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए। ब्रह्मा बाबा साकार से चले गए, लेकिन बाबा की यादगार हमारे सामने शांति स्तंभ के रूप में है। बाबा की इतनी श्रेष्ठ ऊंची स्थिति अंतिम समय थी, यादगार हम देख रहे हैं, तो ऐसे हमें ब्रह्मा बाप समान भी श्रेष्ठ स्थिति बनाना है। और ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए मुझ आत्मा के पास में अलौकिक अनुभव की पूंजी सदा बढ़ती रहे। लेकिन अभी समय की आवश्यकता है, रहम दिल बनकर बेहद की मनसा सेवा करना, अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का दान देना। इसलिए बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, अभी फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करो। क्यों? क्योंकि बाबा हमें बेहद की सेवा करने का चांस दिलाना चाहते हैं। भाई साकार रूप में रहेंगे तो हदों में रहेंगे, भाई मेरी ये बाउंड्री है, मेरे पास नहीं आना, मेरी एरिया में आना नहीं सेवा करने। लेकिन जब फरिश्ता स्थिति की अनुभूति करते, सारे विश्व पर हम बेहद में भ्रमण कर सकते हैं और जितनी चाहे सेवा कर सकते हैं, इसलिए हमें ऐसी फरिश्ता स्थिति को भी निखारते जाना है। फरिश्ता स्थिति अर्थात निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की काया धारण की है, ये स्थूल काया नहीं है। मुझ आत्मा ने ये स्थूल काया रूपी ड्रेस धारण नहीं किया है, लेकिन दिव्य प्रकाश पुंज का शरीर धारण किया है। ऐसी अनुभूति करना, तो ऐसी अनुभूति जब हमारी बढ़ती जाती है तो हम रहमदेल बनकर सारे विश्व की आत्माओं की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि अभी आत्माएं बहुत दुखी है, अशांत है, बंधनों में जकड़े हुए हैं। उन आत्माओं को हमें शांति शक्ति का दान देना होगा, है ना? इसलिए हमारे पास शक्तियों का, शांति का स्टॉक भी, शक्तियों का स्टॉक भी हमें बढ़ाना है, और साथ साथ दातापन की भावना और रहम दिल की भावना भी बढ़ाते जाना है। क्योंकि संगम युग में हमारी असली कमाई कौन सी है? हाँ जी, हमारी असली कमाई कौन सी कहलाती है संगम युग में? हाँ जी, हाँ, आत्माओं को सका देना। हमारी असली कमाई है दुआओं का खजाना बढ़ाना। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो केवल दुआओं का खजाना ही साथ में चलता है, जिसको लोग पुण्य कर्मों की पूंजी कहते हैं। तो अभी हमें गोल्डन चांस है, चाहे जितना ये दुआओं का खजाना हम जमा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें रहमदिल बनकर मनसा सेवा, विश्व की आत्माओं की सेवा करना है। केवल आत्माओं की नहीं, लेकिन तत्वों की सेवा, मनुष्य आत्माओं की, पशुओं की आत्माओं की, पंछियों की आत्माओं की, सर्वोदया अर्थात सर्व के प्रति रहम दिल बनना। इसके लिए बेहद में सदा रहना है। ये सारी आत्माएं मेरे भाई भाई हैं और मैं कल्प वृक्ष के जड़े में हूँ। ये सारी आत्माओं रूपी, आत्माएं रूपी पत्ते मुझ आत्मा से जुड़ी हुई है, उनका ध्यान रखना, उनको शक्तियों का खाद देना, वो जिम्मेदारी मुझ आत्मा की है। ये स्मृति रहने से हमारे पुरुषार्थ में भी तीव्रता आती है और बहुत अच्छी तरह से तेजी से हम आगे बढ़ते जाते हैं। समय ऐसा कह रहा है, परिस्थितियां ऐसी कह रही हैं, बाबा का इशारा हमें ऐसा कह रहा है कि अभी थोड़ा सा उठकर प्रसाद में तीव्रता लाकर ऐसी बेहद में स्थित होकर स्थिति मुझे पावरफुल बनाना है। आलस्य अलबेलापन को मुझे त्यागना है। जो प्रसाद में बाधा डालता है, प्रसाद में साधना का करने का जो शत्रु है, उस आलस्य को मुझे सदा खत्म कर देना है, आने ही नहीं देना है। और हमेशा बरकरार तीव्रता सदा बरकरार रखने के लिए एक सिन हमेशा साथ में सामने रखना है। कौन सा सिन? हम सभी आत्माओं रूपी घोड़े जो है वो आध्यात्मिक दौड़ में दौड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल रेस में दौड़ रहे हैं। भगवान की मेहरबानी हुई है, मुझे भी इस दौड़ में सम्मिलित किया है। तो इस दौड़ में मुझे केवल रनर नहीं बनना है, लेकिन विनर बनना है। और प्राइज विनर बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? हमारी रेस किस में है? हाँ जी, रेस किस में है? योगाभ्यास में हमारी रेस है, याद की यात्रा में रेस है। ज्ञान, धारणा और सेवा, ये तीनों सब्जेक्ट योग के सब्जेक्ट को सपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट हमारा योग का है। उसमें हमारी रेस है। कितना अच्छी तरह से ज्ञान सुना रहे हैं उसमें रेस नहीं, कितनी अच्छी धारणा करे उसमें भी नहीं, सभी धारणा करे, लेकिन योगाभ्यास में हम सभी आत्माओं की रेस हैं और इस रेस में मुझे पीछे नहीं हटना है। मैराथन की जो दौड़ होती है उसको जब हम देखते हैं, जो आगे दौड़ते हैं उनको देखकर सभी खुश होते हैं और जो पीछे थके हारे दौड़ते हैं उनको देखकर दया होती है, बिचारा थका हारा पीछे दौड़ रहा है। तो मैं भी अगर इस रूहानी दौड़ में, आध्यात्मिक दौड़ में पीछे दौड़ता रहूँगा तो ये सीन आध्यात्मिक दौड़ का बाबा बहुत अच्छी तरह से सदा टीवी में देखते रहते हैं तो बाबा क्या कहेंगे, आगे दौड़ेंगे तो कहेंगे मेरा बच्चा देखो कितना चुस्त है और कितना रेस में आगे बढ़ रहा है। बाबा भी खुश और हम भी खुश होंगे। इसलिए मैं आत्मा रेस का घोड़ा हूं ये स्मृति रहेगी तो हमेशा एक चुस्ती और मस्ती सदा अनुभव होती रहेगी। हमेशा नंबर वन पुरुषार्थ की निशानी क्या है, हाँ जी, नंबर वन पुरुषार्थ की निशानी क्या है बोलो ना, नंबर वन पुरुषार्थ की निशानी है हमेशा स्वयं को उमंग उत्साह से भरपूर रखना और साथियों को भी उमंग उत्साह से भरपूर रखना। होशियार माना क्या, होशियार जो होश में रहता है, पावा का इशारा क्या है, समय का इशारा क्या है, दुनिया की परिस्थितियां मुझे क्या कह रही हैं, ये साहस में रहता है और उसी परिस्थितियों के रफ्तार के साथ अपने स्थिति की रफ्तार को भी बढ़ाता रहता है, उसको कहते हैं होशियार विद्यार्थी, है ना। रफ्तार बुद्धि रूपी तार अगर रफ होगी तो रफ्तार धीमी होगी और बुद्धि रूपी तार अगर शार्प होगी, अच्छी तरह से तीक्ष्ण होगी तो हमारी दौड़ने की रफ्तार तेज होगी। और उसके लिए बुद्धि रूपी तार को तीक्ष्ण करने के लिए आवश्यकता है मनन चिंतन के द्वारा ज्ञान के गुह्य राज अच्छी तरह से समझना और समझाना, है ना। तो ज्ञान और योग ये दोनों हमारे पंख हैं, जितना इसकी गहराई बढ़ती है उतना हमारा पुरुषार्थ तेजी से आगे बढ़ता है और आत्मा रूपी पंछी हमेशा दौड़ता रहता है उड़ती कला में, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे बाप समान रहम दिल बनना है, रहम मास्टर, रहम का सागर बनना है। ये लक्ष्य पक्का रखेंगे तो ये रहम दिल का गुण आत्मा में स्वतः ही आता रहेगा, है ना। शेर का बच्चा शेर होता है तो मास्टर सर्वशक्तिवान बाप का बच्चा भी मास्टर सर्वशक्तिवान होता है, रहम दिल बाप का बच्चा भी मास्टर रहम दिल होता है, रहम का सागर होता है। इसलिए वर्तमान समय का इशारा ही है रहम दिल बनकर सारे विश्व की सेवा करते रहना और अनेक आत्माओं को आगे बढ़ाते रहना, बाबा से खजाने लेते रहना और सारे संसार की आत्माओं को खजाने बांटते रहना, ठीक है। और एक बात आप ध्यान में रखेंगे ना, कल्प 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 की स्मृति रहने से ये पुरुषार्थ और सहज होता है। हर कलप हम सभी आत्माएं इस हॉल में ऐसे बैठे थे मधुबन में बाबा के पास आकर, हर कलप ऐसे बैठेंगे। कितना सुंदर ये अभ्यास लगता है। हर कलप हम बेहद की सेवा करेंगे, हर कलप भगवान के राइट हैंड बनेंगे और अनेक आत्माओं का आधार और उद्धार करेंगे, आधार मूर्त बनकर। कितना सुंदर हमारा पार्ट है, हम सभी हीरो एक्टर है इस बेहद ड्रामा के। हर कल्प हम कल्प वृक्ष की जड़े रहेंगे और इतनी आत्माओं का पालना करने का चांस हमें, गोल्डन चांस हमें मिलेगा। कितने भाग्यशाली हम हैं, ताली तो बजाओ जरा। सारे संसार को भाग्य बांटने वाला भगवान हर कल्प मेरा बाप बनेगा, चाहे जितना मैं भाग्य लूट सकूंगा और लुटा सकूंगा। कल्प की, पिछले कल्प की जो स्मृति है ना, हमें बड़ा सुकून देती है, बहुत हमें आनंद आता है, बहुत खुशी दिलाता है, बहुत सुकून हमें दिलाता है। ठीक है, तो अभी हम आधा घंटा एकदम पावरफुल योगाभ्यास करने जा रहे हैं। ठीक है ना भाई, तो जितना चुस्त और मस्त होंगे उतना सुंदर अनुभव भी आप कर सकेंगे। इसलिए सभी थोड़ा खड़े होकर चुस्ती अनुभव करेंगे।
बस मेरा है बाबा तो। प्यार कैसा साथ है दुनिया देख सके ना जिसको बड़ी अनोखी बात है
राह मेरा निरा ही प्यारा रहे पर कैसा साथ है दुनिया देख सके ना जिसको बड़ी अनोखी बात है
आपके जग में सदा सवेरा होता नहीं अंधेरा है जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है बाबा तो बस मेरा है बाबा तो बस मेरा है बाबा तो बस
चुस्त और मस्त होके बैठेंगे सीधा डायरी पेन सब हटा दो पर्स वर्स सब हटा दो एकदम आजाद पंछी बन के बैठो और खुला खुला बैठो जरा एकदम अपनी दुनिया में खो जाएंगे ओम शांति इस शरीर रूपी चैतन्य दीपक में आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति जग मग रही हूँ मौज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश दिव्यता की रोशनी चारों फैल रही है मौज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहो सुंदर आभा मंडल दिव्य प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति पवित्र स्वरूप हूँ पवित्रता का सुंदर ताज मोज आत्म ज्योति ने धारण किया बाप समान मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति रहम दिल हूँ ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। और मुझ आत्म ज्योति से चारों शक्तियों की किरणें फैल रही है। रहम के सागर शिव पिता की संतान मैं आत्मा भी, मास्टर रहम का सागर हूँ। मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य दीपक से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। इस विश्व के गोले से पार पांच तत्वों से पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मोज आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। रहम के सागर प्यारे ब्रह्मा बाबा, अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। प्यारे शिव पिता भी उनके ब्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं फरिश्ता भाव की दृष्टि का असीम आनंद ले रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। भावा की दृष्टि से अनंत शक्तियां और असीम प्यार ग्रहण कर रहा हूं। अभी अभी बाबा मुझे नैनों से इशारा कर रहे हैं, हे मेरे रहमदील बच्चे, मेरे साथ विश्व भ्रमण पर चलो। मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाप के साथ हनुमान की तरह उड़ रहा हूं। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तियों की सकास मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है और मेरे माध्यम से अनगिनत आत्माओं रूपी सितारों पर शक्तियों की सकास पड़ रही है। मैं फरिश्ता रहमदील बनकर अनेक आत्माओं को सुकून दे रहा हूं। एक खंड के ऊपर से दूसरे खंड के ऊपर भ्रमण करते करते 5 ही खंडों पर भ्रमण करते करते पुनः मैं बाप दादा के समक्ष विराजमान हो चुका हूं। भावा की दृष्टि मुझ फरिश्ते पर पड़ रही है। प्यारे बच्चे, मास्टर रहम के सागर बनकर सारे विश्व की सेवा पर सदा उपस्थित रहो। अभी अभी मैं फरिश्ता इस साकारी फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा दिव्य ज्योति धाम की ओर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर उड़ रही हूं। मैं आत्म रूपी चैतन्य ज्योति उड़ती हुई जा रही हूं। ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश से प्रकाश है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, चारों ओर शांति ही शांति, परम शांति है। ओहो, रहम के सागर मेरे शिव पिता, मोज आत्मम ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को देख रही हूँ, देखती ही जा रही हूँ। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा हैं। बाबा हे रहम के सागर बाबा, मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, बेचैन हुई थी। और हे बाबा, प्यारे बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपने दिल तख्त पर अपनी शीतल गोद में बिठा दिया बाबा। जो आपने रहम किया बाबा, इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। ये आपका एहसान मैं भुलाना चाहूं तो भी नहीं भूल सकता। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर है। शक्तियों के सागर शिव पिता से शक्तिशाली किरणों की बारिश मज आत्म ज्योति पर हो रही है। शक्तिशाली किरणों की तेज बारिश मज आत्म ज्योति पर होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति शक्तियों के सागर शिव पिता से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर महा ज्योति शिव पिता से मंगल मिलन मना रही हूँ। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से अपने दिव्य नेत्र से एक टक देख रही हूँ। संपूर्ण एकाग्रता के साथ ज्ञान सूर्य शिव पिता को देख रही हूँ। ज्ञान सूर्य स्नान कर रहे हैं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हो, तपती ही जा रही हो। तपो बल को जमा कर रही हो। मोह रहम दिल आत्मा के पास शक्तियों का खजाना अनुभव हो रहा है। ज्ञान सूर्य शिव पिता से शक्तिशाली किरणों की सकार मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है और मुझ आत्मा के द्वारा सारे संसार की आत्माओं पर चैतन्य आत्माओं रूपी सितारों पर शक्तियों के किरणों की सकाश पड़ रही है। अनेक आत्माएं शक्तियों की किरणें अनुभव कर रही है, राहत अनुभव कर रही है और दिल से दुआएं भी दे रही है। कितना प्यारा अनुभव है यह। शांति सागर शिव पिता से शांति की किरणों की वर्षा मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रही है। मेरे द्वारा सारे विश्व की आत्माओं पर शांति की शीतल किरणों की बरसात हो रही है। अनेक आत्माएं शांति की शीतलता अनुभव कर रही है। शक्तियों से भरपूर आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन इस साकारी दुनिया की ओर आ रही हो और इस साकारी शरीर रूपी चैतन्य दीपक में मैं चैतन्य आत्म ज्योति विराजमान हो चुके हूँ और मौज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्ति हस्तियों की सजीव तरंगे सारे संसार में चारों ओर फैल रही है, फैलती ही जा रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। जैसे मेरे शिव पिता रहमदील हैं, निराकार ज्योति बिंदु रहमदील हैं, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकारी रहमदील आत्मा हूँ। मेरे भ्रुकुटी में मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों ओर फैल रही है। कितना सुंदर अनुभव है यह। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दमकता हुआ दिव्य सितारा।
बाप समान रहम दिल बन करके आप सभी ने विश्व को सकाश दी। बहुत सुंदर मार्गदर्शन भी मिला। एक हाथ हिलाकर धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।